Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, गौरांगर संगी गण नित्य सिद्ध करी माने तारे हुए ब्रज भूमि वास। जैसे भगवान नित्य हैं तो भगवान की सेवक भी नित्य हैं, तहारा सेवक का नित्य। तो स्वयं भगवान सच्ची पुत्र के रूप में जन्म लिए, गौरांग महाप्रभु के रूप में, और वो प्रकट होने के पहले कुछ उनकी पार्षदों को भेजे थे जो उनके गुरुजन वर्ग हैं, और कुछ पार्षद के साथ समकालीन रूप से अवतीर्ण हुए थे। सो पार्षद स्वय धाम सह अवतरी। जब गौर पार्षद प्रकट होते हैं तो गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य का अभिप्राय को विस्तारित करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि महाप्रभु किस लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की लीला बहुत गुह्य और गोपनीय है, परंतु उनकी भक्तों के द्वारा उस गुह्य विषय को हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान अकेला नहीं आते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। गुह्य विशुद्ध विज्ञानम जज्ञान्त अमृत स्मृति। अगर इस गुह्य विषय को उनकी निजी संगी और निजी पार्षदों से हम यदि समझ जाए तो जीवन की अमृत तक को हम प्राप्त करते हैं। आज इस प्रसंग में देखते हैं कि माधवेंद्र परिपाद जो चैतन्य महाप्रभु जिस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए थे, तो इस कृष्ण प्रेम का बीज को वो बोए थे। कौन? माधवेंद्र परिपाद। और इस बीज की सिंचन किए उनके अन्यतम शिष्य ईश्वर परिपाद। और ये जो वृक्ष प्रकट हुआ वो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और इस वृक्ष के जो फल फलंग वो भी स्वयं महाप्रभु, और इस फल को भी आस्वादन करने वाले स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने इस फल को भी वितरण किया। तो कृष्ण के प्रेम को कृष्ण स्वयं ही देने के लिए आते हैं, कृष्ण के सिवा और कोई कृष्ण प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता है। और ये कृष्ण प्रेम के अधिकारी कौन है? श्रीमती राधारानी। तो माधवेंद्र परिपाद किस प्रकार इस कृष्ण प्रेम के बीज को बोए, एक उनकी सुप्रसिद्ध श्लोक है। इसमें राधारानी की विरह प्रकट होती है। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ये सबसे उच्च परंपरा है, जितने प्रकार के कृष्ण रस से संबंधित परंपरा है, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस तक, उसमें से गौरांग महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित माधुर्य उज्ज्वल प्रेम की जो प्राकट्य इस गौड़ीय धारा जिसका शुरुआत माधवेंद्र परिपाद से हुआ, उन्होंने परक्या तत्व को बहुत प्राधान्य दिया। इसलिए गोपियों के भाव को समझना है और कृष्ण के सर्वोच्च रस कैसा है, जिसको कहते जय जय ज्वला रस सर्प रस सार। तो सबसे उत्कृष्ट रस मेलो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ती रस को आस्वादन करने वाले स्वयं राधारानी हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं, और तीसरा व्यक्ति कौन है? माधवेंद्र परिपाद। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिस समय इस धराधाम से वो अपने लीला संपूर्ण करने जा रहे थे, उस समय लेटे लेटे इस विरह में इस श्लोक को आवृत्ति करते थे। आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयं तदालोक कातरं दैत भ्रमति किं करी अहम्। ठीक चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार श्लोक उच्चारण करते हैं, ठीक राधारानी की भावना। वो कौन सा है?
जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावसायितं सुन्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे।
कृष्ण के विरह में एक मुहूर्त एक युग की बराबर प्रतीत होता है, इसको कहते विरह। कृष्ण चिंतन में मन इतनी मग्न रहता है, एक क्षण के लिए भी मन और किसी दशा पर नहीं जाता है, इसको कहते ट्रांस समाधि। साधक इसको धीरे धीरे अभ्यास करता है। शनै शनै रूपमेदं बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। और किसी विषय को चिंतन नहीं करना, धीरे धीरे शनै शनै इस रूप को इस लीला को स्मरण करना चाहिए। किस प्रकार? धारणा शक्ति के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा इस धारणा को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध्या धृति गृहीतया भजन के द्वारा भगवान जब बुद्धि योग प्रदान करते हैं तो स्मृति जागृत होता है, कृष्ण स्मृति कृष्ण लीला। इसलिए सहजिया नहीं बनना चाहिए, कभी कभी भावुकता नहीं बनना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये जस्ट प्राइमरी स्टेज के लिए भक्तों के लिए है, हम तो लीला चिंतन करें। परंतु लीला चिंतन का एक विज्ञान है, ये विज्ञान आचार्य लोग स्वयं सिखाए हैं। और इस लीला चिंतन का सर्वश्रेष्ठ टीचर कौन है? श्रीमती राधारानी नित्यानंद प्रभु, ये गुरु हैं। तो विरह को कैसे फील करना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस बात को सिखाने के लिए शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराण, कैसे हम सीखें, उन्होंने शुरू किए चेत दर्पण से। अमानिना माना देना सेकंड स्टेज, फिर धीरे धीरे जब ये अनर्थ को पार करते हैं, भगवत भक्ति में निष्ठा और रुचि उत्पन्न होती है, तो ये विरह भाव प्रकट होता है। क्योंकि राधारानी हमेशा ही सेवा में ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। कृष्ण की सुख के बिना एक मुहूर्त उनकी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती नहीं है। हम प्रयास करते हैं मन से अन्य विषय को हटाने के लिए, तो इसलिए स्वयं श्री कृष्ण इस शिक्षा को ऐसे प्रेमी भक्तों के द्वारा ही वितरित करते हैं। हम जैसे परसों चर्चा किए थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, तो कृष्ण की जो दया है, कृष्ण की जो प्रेम है, उसको स्वयं मूर्ति के रूप में प्रकट कराते हैं। तो साक्षात हरित्वेन, तो हरि के सारे गुण साक्षात प्रकट होता है श्रीमूर्ति के रूप में। मूर्ति स्वरूप। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रिय सेवक है, किंतु प्रभुज प्रिय एव, और सब प्रकार के उन्हें प्रिय करते हैं, सभी का प्रिय करते हैं। भगवान जैसे सबकी सुहृद है, सबकी प्रिय करते हैं। धीरा धीर जन प्रिय, प्रिय करो। तो माधवेंद्र पुरीपाल अपने भक्ति के द्वारा ये सारे संसार को आप्लावित किए। हम देखेंगे तो माधवेंद्र पुरीपाल उन्होंने वृंदावन में कुछ समय रहे और कुछ समय रहे उड़ीसा में, जिनकी समाधि भी कहां पर है कौन बता सकता है? रेमुणा खिरचुरा गोपीनाथ। तो इस प्रकार आप देखिए उनकी भक्ति की भाव को कौन स्वीकार कर रहे हैं? गोपीनाथ। और जो गोपीनाथ है हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तीन आराध्य देव है, कौन कौन? पहला है मदन मोहन श्री राधा मदन मोहन, दूसरा है गोविंद देव और तीसरा गोपीनाथ। तब जब प्रयोजन स्थिति में पहुंच जाता है साधक, पहला क्या है? संबंध, फिर अविध है गोविंद। जो प्रयोजन स्थिति में पहुंचता है साधक, अर्थात जिसके लिए वो साधना करता है उसकी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उस समय स्वयं गोपीनाथ सुंदर श्री विग्रह के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और नित्य निरंतर इस रस को आस्वादन करता है जिसे गोपियों ने आस्वादन किया, इसलिए गोपीनाथ है परक्या रस। तो माधवेंद्र पुरीपाद इस प्रकार परक्या रस के साथ जुड़ते थे। ये कारण है कि जब वहां गोपीनाथ के पास पहुंचे तो उनके मन में इच्छा हुई, हालांकि यहां गोपाल जी के विग्रह की पूजा कर रहे थे, गोपाल जी प्रकट हुए। अरे गोपाल कौन है? जो गोपियों के साथ रासलीला करने वाले हैं, गोचारण करने वाले, रासलीला करने वाले, वो भी साक्ष्य माधुर्य और वात्सल्य रस का तीनों स्वरूप है। परंतु माधवेंद्र पुरीपाल के पास ये माधुर्य रस है, पहले तो स्वप्न में प्रकट हुए माधवेंद्र पुरीपाल की, नहीं सॉरी, पहले तो भजन कर रहे थे गोविंद कुंड के पास, तो गोपाल जी एक बर्तन में दूध लेके आए और कहे बाबा ये दूध ले लो। तो तुरंत माधवेंद्र पुरीपाल का आंख खोल गया और देखे, अरे इतनी मिठास बोलने वाला कौन है? जो हमें नजर पड़ा देखे कि सुंदर सांवला लड़का है और उनको देख करके उनकी नजर लग गई। ऐसे तो माधवेंद्र पुरीपाद मौन व्रत धारण करते थे, अजगर वृत्ति, जो मिल गया मिल गया, अजाचित वृत्ति। परंतु इस लड़के को देख करके वो मौन नहीं रह पाए, पूछने लगे, लाला बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, क्या करते हो? और लड़का ने कहा मेरे नाम गोपाल है और मैं इस गांव की ग्वाला हूं, दिन रात मेरी काम है गाय चराना। तो बाबा दूध रखो, अभी गोधन के समय हो गया है, मैं जा रहा हूं और मैं फिर आकर के लौट करके बर्तन ले लूंगा। तो माधवेंद्र पुरीपाल वो देखते रहे, उसके बांट जोहते रहे और कुछ देर के बाद देखे वो लड़का गायब हो गए। क्या करे, भूख लग रहा था, दूध तक पी लिए। जय श्री श्री राधा राधिका रमण जीव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। दूध पीने के बाद उनको इतनी तृप्ति की अनुभूति हुई, ओह लगा उनको अमृत जैसे लग रहा है। और पी करके वो देखते रहे कि ये लड़का आएगा कि नहीं। फिर भजन करने में लग गए। लगभग रात्रि के अंतिम प्रहर तक, अर्थात 3 बजे तक वो क्या कर रहे थे, जप कर रहे थे। और उस समय उनको थोड़ा सा तंद्रापन नहीं दिया गया। देखिए साधु लोग की जब नींद आता है तो उनकी नींद को तमोगुण नहीं कहा जा सकता है, उस नींद को भी समाधि कहा जाता है। परंतु हमारी भक्त लोग जब भी क्लास में छुपकी आ जाता है तो हम कमेंट पास करते हैं, देखो समाधि लग गया है। परंतु प्रभुपाद बोले कि फास्ट सर्विस लेटर समाधि, तो श्रवण आदि पहला सेवा करना चाहिए फिर बाद में समाधि लेना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरीपाद पूरा दिन भर जप किए और फिर उनका कैसे समाधि आए, तो सपने में देख रहे हैं कि वही बालक आकर के कहते बाबा आओ ना मेरे साथ। उनके हाथ पकड़ करके एक झाड़ी की, जो कंटली पेड़ है और झाड़ है, उसके पास लेकर के वो लड़का कहता है बाबा ये देखो मैं कई दिनों से यहाँ पर पड़ा हूँ, धूप बारिश ठंडी यहीं पड़ा पड़ा मैं सहन करता हूँ सब कुछ, और मेरे सेवक ने जबल लोगों की भय से यहाँ मुझे डाल के चल गए, और मैं तुम्हारी बाट देख रहा था कब आएगा माधवेंद्र पुरी। और उतने में ही उनकी समाधि टूट गई, सपना समाप्त हो गया। और देखे सवेरा हो गया है, तो फिर ब्रजवासियों को लेकर के वो स्थान को जहां स्वप्न में वो देखे थे वो स्थान जाकर खोदा किए और देखे कितनी सुंदर विग्रह। तो चंदन यात्रा के अवसर पर आप लोग सुन चुके होंगे तो किस प्रकार तो माधवेंद्र परिपाद इस विग्रह को अभिषेक किए, कितने तेल लगाए, कितने पानी डाले, फिर भी गोपाल जी कहे मेरे ताप नहीं गया है, आप मलय चंदन लेके आओ। और उसी दिन से इस चंदन यात्रा चल रहा है सभी मंदिरों में। एक भक्त की निष्ठा देखिए, एक परंपरा सृष्टि करता है भक्त की निष्ठा। और माधवेंद्र पुरीपाद 2 ब्राह्मणों को वहां लगा करके, सेवा में लगा करके चल पड़े मलय चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी। और रास्ते में जब पहुंचे गोपीनाथ जी के पास, वहां एक उत्सव चल रहा था। अब जानते हैं कि इसका पहले, इस चंदन यात्रा के पहले जो होली उत्सव के बाद गौर पूर्णिमा के बाद, तो वहां 23 दिन तक गोपीनाथ मंदिर में, खिरेचुरा गोपीनाथ मंदिर में उत्सव चलता है। और संजग बस माधवेंद्र पुरीपाद उसी उत्सव के बीच में पहुंचे और देखे सभी सेवक तत्परता के साथ गोपीनाथ जी को अलग अलग प्रकार के सब भोग लगाते हैं। परंतु शयन के समय देखें कि मिट्टी की पात्र में, कुल्लड़ में कुछ ऐसे भोग लेके जा रहे हैं। और पुरीपाद ने पूछे ये कौन सी भोग है, तो सेवक ने उत्तर दिए ये अमृत कली है। अमृत कली, ओह कैसे इसका स्वाद हुआ होगा, अमृत केली कहते हैं इसको। तो माधवेंद्र पुरीपाद के मन में यह हुआ अगर यदि ऐसे प्रसाद का मैं भी थोड़ा आस्वादन करता तो मैं भी ऐसे गोपाल जी को लगाता। और स्वयं गोपीनाथ ने छिपा करके एक कुल्हड़ रख दी। और उनकी सेवक को स्वप्न में कहे, जाओ एक माधवेंद्र पुरी करके कोई साधु आया है ब्रज से, इसको लेकर के दे दो। और माधवेंद्र पुरी पर इतनी आश्चर्य हो गए कि ठाकुर जी ने खीर को, उस अमृत केली को स्वयं छिपा के रखे, पुजारियों को भी पता नहीं चला। और उसी दिन से डीटी का भी इनिशिएशन हो गया। क्या इनिशिएशन हुआ, उनका नाम पड़ा क्या, खीर चोर गोपीनाथ। गोपीनाथ जी थे, उनका नाम भी अभी अच्छे संजोग कर दिए, खीर चोर। माखन चोर नाम था ब्रज में, लेकिन वहां उत्कल में नाम पड़ गया खीर चोर, खीर चोरा हरी, अतएव नाम पड़ेला खीर चोरा हरी। तो शिष्य ने उनको दीक्षा भी दे दी, प्रभु को भी दीक्षा दे दी, हाँ, इस लीला के द्वारा। और फिर माधवेंद्र पुरीपाद सोचने लगे कि जब लोगों को पता चलेगा भगवान ने मेरे लिए इतने इतने काम किए, तो सब लोग आएंगे मुझे सम्मान करने के लिए। इसलिए रात में ही भाग गए, वो खीर प्रसाद को पा करके और बर्तन को टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कपड़े में बांध करके चल पड़े जगन्नाथपुर। परंतु भगवान जिसको जस देना चाहते हैं, जिनकी प्रसिद्धि देना चाहते हैं, तो वो ना चाहने पर भी संसार में फैल जाता है। परंतु जो सबसे निपट मूर्ख है, वो अपने प्रसिद्धि चाहता है होर्डिंग पर, चैनल पर। परंतु एक शुद्ध भक्त की प्रसिद्धि भगवान पूरा ब्रह्मांड में फैला देते हैं, कोई टीवी चैनल में नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं, होर्डिंग पर नहीं। और लोगों का वोट चलता, कौन है व्यक्ति उनको देखने के लिए। उनकी इतनी प्रसिद्धि है। तो फिर उन्होंने जैसे भी तैसे चंदन लेके आए, और गोपीनाथ जी फिर वहां पर कुछ समय रहे कि मैं गोपीनाथ को दर्शन करके जाऊं। गोपाल जी फिर स्वप्न में कहे, देखो ये मेरी अभिन्न विग्रह है। गोपाल कौन है, गोपीनाथ की अभिन्न स्वरूप। तो कहीं गोपीनाथ को अब चंदन पहनाओ और मुझे शीतलता प्राप्त होगा ब्रज में। तो इसलिए उस क्षेत्र को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। बलदेव विद्यावसन पाद उस क्षेत्र को गुप्त वृंदावन, और उनकी प्राकृतिक, उनकी भी जन्म वहीं पर है, बलदेव विद्याभूषण, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की शिष्य थी। तो कभी आपको अवसर मिलता है तो खीरचोरा गोपीनाथ से थोड़ी दूर है, हमारे जो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का भी जन्मस्थान वहीं पर है पास में, हम इस बार गए थे कुछ स्रोत के भक्तों के साथ, बहुत अच्छा स्थान है। और माधवेंद्र फुरीपार पांग उसी दिन से गोपीनाथ की निष्ठा में, गोपाल जी की सेवा छोड़कर की गोपीनाथ की चिंतन में, तो वहां पर उनकी समाधि भी है। तो कृष्णदास कविराज जब चैतन्य महाप्रभु की पार्षद की वर्णन करते हैं, तो माधवेंद्र पुरीपाद को कहते हैं कि जिस प्रकार कौस्तुभ मणि की सुगंध ही सारे संसार में फैल जाता है, एक स्थान में रहता है लेकिन उसकी सुगंधी पूरा आसपास के एरिया में फैल जाता है, तो उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद की जो भक्ति की महिमा है, उसकी सुगंधी है, पूरी संसार में फैल गया। और राधा कृष्ण की जो आराधना की जो विरह भाव, जो चैतन्य महाप्रभु ये सारे संसार को शिक्षा देना चाहते थे, तो इसकी मूल उद्गम हुआ था माधवेंद्र परिपाद से। और माधवेंद्र परिपाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को गौड़िया वैष्णव को शिक्षा दी कि अजाचित भाव से कैसे भजन करना चाहिए। कृष्ण अनन्य चिंतन करने वालों को कैसे उनकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, योगक्षेम वहामि हम, तो इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण जाके जितने उदाहरण है माधवेंद्र परिपाद। श्रील माधवेंद्र परिपाद अभिभाव महामहत्सव की जय। तो उसी प्रकार ये भी परक्या रास के उपासक हैं श्रीनिवास आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास की बात जब सोचने लगे कि सारे संसार केवल ज्ञान देने से कल्याण नहीं हो सकता है, अभी मुझे स्वयं ही इस प्रेम की स्वरूप को धारण करके सबके पास पहुंचना चाहिए, भिखारी के रूप में जाकर के मांगना चाहिए। इसलिए वो स्वयं संन्यास ग्रहण करने के लिए काटुआ चल पड़े। कुछ पार्षद काटुआ में भी रह गए चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद, और कुछ पार्षद नीलांचलपुरी आ गए, और कुछ पार्षद फिर चैतन्य महाप्रभु जब आदेश दिए कि वृंदावन जाओ, रूप सनातन आदि कुछ पार्षद वृंदावन आ गए इस विरह लीला को आस्वादन करने के लिए। नवद्वीपवासी जो नवद्वीप में रहने वाले हैं, आजकल आप देखते हैं ना परिक्रमा करते समय देखो वहीं काली पूजा में लगे हैं। कुछ गौड़िया वैष्णव हैं जिन्होंने इस प्रकार की महाप्रभु के भाव को समझते हैं, इन सब लोग इस ज्ञान रस में लगे हुए हैं, पूजा पाठ कर्म कांड में टाटार्जी बाटार्जी सब बनार्जी सब लगे हैं इसमें कर्मकांड में। क्योंकि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु उस विरह भाव माधुर्य भाव को नवद्वीप में प्रकट नहीं किए, कहां प्रकट किए, नीलांचल और वृंदावन। परंतु गुप्त रूप में श्रीवास संगम में रखे, इसलिए कुछ गौड़िया वैष्णव हैं जो सीक्रेट जिसको हम कहते हैं निधिवान, और कौन सा जो श्रीवास संगम को वृंदावन में दो बान है ना, निधिवान और एक सेवा कुंस, ये दो स्थान में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाएं होती हैं, तो वो रासलीला क्षेत्र है श्रीवास संगम। और ये सबके लिए ओपन नहीं था, कुछ चुने हुए पार्षदों के लिए था। इसी प्रकार नवद्वीप में भी है लेकिन कुछ चुने हुए पार्षदों के लिए, और नीलांचल क्षेत्र में जो गंभीरा है महाप्रभु गंभीर भाव है, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ इस गंभीर भाव के आस्वादन करते थे। और वहां जो लोग शुष्क तार्किक दार्शनिक थे उनको भी जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य उनको भी ये भाव प्रदान किए, ये गंभीरा भाव भगवान की विरह में दिन रात अश्रुपात करना। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलांचल पुरी चल गए तो चैतन्य दास जो यहां नवद्वीप पे रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार नवद्वीप त्याग करके नीलांचलपुरी जाना जो विरह है उसको सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचे कि यहां हम घर पर छोड़कर कि वही नीलांचलपुरी में रहे, और पत्नी के साथ उन्होंने नीलांचलपुरी चल गए। तो उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो चैतन्य महाप्रभु कहें कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उनका नाम होगा श्री निवास, अर्थात जिनमें लक्ष्मी जी स्वयं निवास करेंगे। लक्ष्मी का मतलब राधा रानी, अर्थात स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस श्रीनिवास की शरीर में नित्य निवास करते हैं। ये गौरांग महाप्रभु की भक्त्या आवेश अवतार, भक्ति आवेश अवतार, और चैतन्य महाप्रभु शक्ति संचार किए उसी समय। तो फिर जी जब चैतन्य दास के अप्रकट हो गए हम, तो श्रीनिवास आचार्य कहाँ आए? वृंदावन, रूप सनातन की सानिध्य प्राप्त हुआ। और चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्ट किए थे कि रूप सनातन के द्वारा रचित भक्ति ग्रंथ के वितरण इस श्रीनिवास के द्वारा होगा। तो इस श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण किए और श्री लजीब गोस्वामी पाद से सारे भक्ति शास्त्र के अध्ययन किए, शिक्षा ग्रहण किए। तो उस समय हमारी गौड़ीय वैष्णव के बीच में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेदभाव नहीं था। आजकल जैसे डिस्टिंक्शन होता है, ये बहुत धर्म में भक्ति में बहुत संकटता आ गई है। क्योंकि हम लोग सिद्धांत को ना ही सुनते हैं ना समझते हैं। कृष्णदास कविराज ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के प्रारंभ से पुस्तक को संकलन करने की पहले ही इस गुरु के महिमा वर्णन करते, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की। देखिए श्रीनिवास आचार्य दीक्षा लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी से और रहे जीव गोस्वामी की अधीन में, शिक्षा ग्रहण करके फिर जीव गोस्वामी पाद ने उनको भेजे। किस लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ब्रजवासियों के द्वारा, बाद में शायद हस्तिनापुरवासियों के द्वारा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में जो ब्रजवासी थे, पहले ब्रजवासी ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे, जो ब्रज में रह करके भजन करना चाहते हैं, कहते नेक्स्ट लाइफ उनको फिर विदेश में जन्म मिलेगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग समझते नहीं क्या क्या है, स्पॉन्सर कर देते हैं, लोगों के पास पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी इस एटम बम कभी ना कभी विस्फोट हो जाएगा, हाँ लोगों के अंदर कुछ क्रांति ला सकता है। क्योंकि इसकी इतिहास है, ये पहला विस्फोट हुआ था कहां पर? बीर हमीर राजा, तो वो भी गौड़ीय वैष्णव बन गए, स्मार्थ थे, और उनके पास एक का गैंग था डकैत दल का, चोरी करने के लिए भेजते थे, लेकिन पहला बम विस्फोट वहां हुआ। तो अभी आप देखते हैं कितने से बड़े बड़े लोग माला झोली ले लेते हैं, चलो जप करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ के द्वारा और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुजाई हैं, श्री चैतन्य मनभिष्टम स्थापितम जेन भूतले, जिस संसार में चैतन्य महाप्रभु की मनभिष्ट को स्थापन करने के लिए का सारे संसार में इस दर्शन को, इस शिक्षा को फैलाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो सेम पटेंसी है, एक साधारण पुस्तक नहीं है। कितने लोगों के अंदर ये क्रांति लाता है। जदबाग विसर्ग जनताग विप्लवम जस्मिन प्रति श्लोक अवध्यवत्यापि नामानि अनंतस्य जसंकितानि यत् श्रुणन्ति गायन्ति भृणन्ति साधु। साधु बनने के लिए ही ये बहुत आवश्यक है इस ग्रंथों को अध्ययन करना। और श्रीनिवास आचार्य और अपने दो साथियों के साथ जो जीव गोस्वामी के अध्ययन में रह करके अध्ययन कर रहे थे वो हैं नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। ये तीनों ने बैलगाड़ी में, हाँ कोई वैन नहीं था, बस नहीं था, बैलगाड़ी में लेकर के कहाँ गए? बंगाल और उड़ीसा। इसलिए आज भी देखा जाता है उस क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र से गौड़ीय वैष्णव के अनुजाई ज्यादा भक्त बनते हैं वहां, क्योंकि आचार्यों की कृपा है। नॉर्थ साइड में थोड़ा कम होता है, साउथ साइड में बहुत कम है, हालांकि वहां भी इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन भक्त बहुत बनते हैं। नामहट में कितने बंगाल के भक्त हैं। तो ये तीनों की कृपा है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। और श्यामानंद प्रभु की समाधि भी वहीं पर है जहां पर माधव इंद्रपुरी पाद की समाधि, वही गोपीनाथ मंदिर के पास श्यामानंद प्रभु। तो श्रीनिवास आचार्य केवल विद्वान नहीं थे, वो इतनी उच्च कोटि की शिक्षक थे जिनके हर आचरण साधारण लोगों को प्रभावित करता था। इसलिए जीव गोस्वामी पाद उनके नाम क्या रख दिए? श्रीनिवास और आचार्य। आचार्य वो ही होता है जिनके हर कार्यकलाप लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करता है। आपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखा, कुछ लोग ऐसे आचरण करते प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आचार और प्रचार जो दोनों कार्य करता है, जगत रे गुरु तुमी जगत रे आर्य, आचार प्रचार कर दुई कार्य। उनके आचरण ही वास्तविक प्रचार होता है। जत जत आचरति श्रेष्ठम, तो आचरण ही वास्तविक प्रचार है। इसलिए महाप्रभु ने आचरण किए और आचरण से ही सिखाए। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन इस सब जगह में फैलता है। इसके कारण क्या है? इनके अनुजाई आचरण करते हैं, जिसको कहते हैं भाई तुम सोलमला करो, दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि स्वयं यदि नहीं करता है तो लोगों के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। परंतु सोलमला करके फिर प्रभुपाद की ग्रंथ को अध्ययन कर जब प्रचार करता है तो देखो कितने लोग आते हैं, चाहे सेवन डेज सेशन में हो, फूड फॉर लाइफ के द्वारा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जोड़ते हैं। इसी प्रकार जो आचार्यों की जो अभीष्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो अभीष्ट है, इस ग्रंथ के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा, प्रचार के द्वारा फैल रहा है। इसलिए हर भक्तों का जिम्मेदारी होना चाहिए क्या? प्रचार करे, ग्रंथों को प्रचार करे। प्रचार ही सार, दैट इज द एसेंस। ये हरे कृष्ण मोमेंट का यही एसेंस है, प्रचार। कृष्ण उपदेश कहना है तो इस पुस्तक को लेके प्रचार कर सुना। हमारे इतने स्मृति नहीं है, भूल जाते हैं। और श्रीनिवास आचार्य, उनका पहला डिसाइपल कौन है? रामचंद्र कविराज, वो भी बहुत बड़ा विद्वान थे, रामचंद्र कविराज। और श्रीनिवास आचार्य रागानुग जो परंपरा है इसको फिर आगे बढ़ाए, रागानुग और रूपानुग। तो श्रीनिवास आचार्य बहुत समय समाधि में रहते थे, भजन समाधि, और वह राधारानी की नित्य सेविका हैं, जिनको हम कहते हैं मणि मंजरी। तो एक समय श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए हाथ में एक चामर ले लिए, और ये चामर का जो बेंट है जिसको पकड़ते हैं तो सोना की था, और स्वयं एक माला बनाए, और चैतन्य महाप्रभु मानसिक चिंतन के द्वारा उस माला को अर्पित किए एक सिंहासन में बैठा करके, और फिर चैतन्य महाप्रभु लीला को जब स्मरण करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु उस माला को फिर श्रीनिवास आचार्य को पहना दिए ध्यान में, वो ध्यान कर रहे हैं लीला को, और श्रीनिवास आचार्य जब भजन समाधि से अपने बाह्य दशा को प्राप्त किए, देखे अरे ये माला तो मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाया था, ये मेरे गले में कैसे आ गया। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य जो मणि मंजरी हैं, तो वो समाधि में क्या देख रहे हैं कि उनको सारे गोपियां ने कह रहे हैं कि जाओ अभी होली उत्सव आ गया है, डीक के पास एक गांठली ग्राम है जो चैतन्य महाप्रभु एक रात वहां ठहरे थे, गोवर्धन से कुछ दूरी है, शायद 3-4 किलोमीटर होगा गांठली ग्राम, जहां पर राधा कृष्ण की वस्त्र में गांठ पड़ी थी, और अभी वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है गुलाल कुंड, वहां पानी भी अभी कैसे जैसे पीली पोखर की पानी थोड़ा से पीला दिखाई पड़ता है, तो गुलाल कुंड की जल भी अभी तक गुलाल के रंग जैसे है। तो उस गुलाल कुंड पर एक होली उत्सव चल रहा था, उस समय गोपियों ने श्रीनिवास आचार्य को कहे जाओ तुम राधारानी की अंग पर इस फगु लगा दो अभीर, और कृष्ण के साथ राधारानी का पक्ष लेकर के कृष्ण के साथ अच्छी तरह से लड़ना, छोड़ना नहीं उनको। तो ये समाधि में इस लीला को दर्शन कर रहे हैं, तो गोपियों के आदेश को प्राप्त करके श्रीनिवास आचार्य ने राधारानी के शरीर में गुलाल लगा दिए और उनको सुंदर रूप से सजा दिए, जो हार से मणिजुक्त हार से। तो फिर जब कृष्ण के साथ वाद विवाद हुआ, ग्वाल बाल ने आकर के झगड़ने लगे, तो उस समय श्रीनिवास आचार्य जो मणि मंजरी हैं, तो वह राधारानी के पक्ष से झगड़ने लगा, और तुरंत उस लीला को स्मरण करते करते जहां पर वो बैठे थे वो भूमि क्या होने लगा, हिलने लगा, समाधि के शक्ति। परंतु हम जब समाधि में लग जाते तो क्या होता है, हमारा सर हिलता है ना, आगे पीछे हिलता है। तो इसी प्रकार अकस्मात फिर श्रीनिवास आचार्यों का ध्यान टूट गया, और फिर देखे कि उनके सारे शरीर कैसे बन गया है, जैसे मयूर पुच्छ का जो रंग है उनके सारे शरीर इस प्रकार कलर हो गए हैं। श्रील श्रीनिवास आचार्य अभिभाव महामहोत्सव की जय, होली लीला की जय। और ऊपर है परमेश्वरी दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु की पार्षद, और वो ये जाह्नवा माता की अनुजाई थे, विशेष करके जो जाह्नवा माता वृंदावन को जितनी सारी राधारानी का ड्यूटी लेके आए, और पहला जो ड्यूटी था गोविंद देव के साथ, पहले सभी विग्रह एक एक थे, राधा मदन मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ, परंतु जाह्नवा माता ये जो गौड़ीय वैष्णव को ये का गिफ्ट दिए कि कृष्ण के साथ राधारानी की वर्शिप होना चाहिए, हाँ शक्ति और शक्तिमान की उपासना। तो ये जो परमेश्वर परमेश्वरी दास ठाकुर की परमेश्वर दास ठाकुर राधारणी का कि कृष्ण का, कई जगह में लिखा है परमेश्वर, समाधि पुस्तक में लिखे हैं परमेश्वर दास ठाकुर। तो परमेश्वरी होगा तो राधारणी की है, राधारणी की दास। तो ये जानवा माता की साथ रहे, और ये जो वृंदावन में जो जो राधारानी के जो विग्रह स्थापन हुआ तो वह उस सेवा में उन्होंने मदद किए थे जानवा माता को। और राधा रमन देवी जी की प्राकट्य, एक्चुअल काल ही प्राकट्य था राधा रमन जी की रात में, लेकिन आज उस उत्सव को मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दर्शन किए। कि जब वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु गए थे उसी समय ये जो गौड़ीय वैष्णव का जो प्रेम है, हाँ राधा रानी का प्रेम है, वहीं पर दक्षिण भारत में बो करके आए थे वेंकट भट्ट के घर में। और जब 4 महीना तक चैतन्य महाप्रभु रुके वेंकट भट्ट के घर में तो उनकी जो छोटा पुत्र था जो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी बने, तो चैतन्य महाप्रभु को उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था और चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि तुम माँ बाप की सेवा करना और फिर बाद में वृंदावन जाना। तो महाप्रभु के आदेश को पालन करके उन्होंने पिता माता की सेवा की और पिता माता के अप्रकट होने के बाद तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ आ गए, वृंदावन आ गए। तो उनको कोई कह रहा है कि ऐसे कावेरी नदी से कुछ सालग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी, कितने 12 सालग्राम शिलाएं, और इस सालग्राम शिला को एक कपड़ा में बांध करके अपने अपने गले में लटका करके लेके आए। और ये जो 12 सालग्राम शिला है तो प्रतिदिन तुलसी और चंदन से उसको सेवा करते थे, अभिषेक करते थे। तो एक दिन कोई एक धनाढ्य व्यक्ति तो कुछ सोना गहना मुकुट बंसी और कुछ लायन क्लथ कुछ लेके आए और बैठने के लिए जो पूजा करने के लिए एक पीढ़ा और कुछ प्रसाद देखे गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचे अरे ये कौन दिया है गिफ्ट। तो फिर जो वणिक था वो प्रणाम करी कहा कि ठाकुर जी के सेवा में लगा देना, और कहा कर कि वो चल गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे अरे ये मुकुट किसको पहनाऊं, ये सालग्राम शिला है कहां पर पहनाऊं, इसको बंसी कैसे पकड़ाऊं, वस्त्र किसको पहनाऊं, तुलसी जल से तो हो जाता है, तुलसी चंदन से हो जाता है उनकी सेवा, लेकिन ये जो वणिक था बहुत श्रद्धा से दिया था। देखिए भगवान भावक रही हैं, सबकी भाव को स्वीकार करते हैं। तो भट्ट जी भी सोचे अगर हमारी सालग्राम शिला के पे तो ऐसे रूप होता है तो मैं भी उनको पहना देता, क्योंकि उनकी विशेष श्रद्धा थी उस 12 सालग्राम शिला में से एक सालग्राम जिसका नाम था दामोदर, दामोदर सालग्राम। तो अलग अलग सालग्राम होता है ना, नरसिंह होता है, मुझे पता नहीं पुजारियों को पता होगा, अलग अलग प्रकार के सालग्राम का पहचान होता है, कोई बराहा होता है। तो जो दामोदर सालग्राम था तो उस सालग्राम सपरे 12 इंच बन गए हैं और एक सुंदर विग्रह बन गए हैं। जब भट्ट जी गए ठाकुर जी को जगा करके पूजा करने के लिए तो उस 12 सालग्राम के बीच में ये विग्रह खड़ा हुआ, बहुत सुंदर अभी जो आप देख रहे हैं। तो भट्ट जी का आनंद की सीमा नहीं रहे। और ये घटना कब हुआ था, नरसिंह चतुर्दशी की रात में, और सवेरे आकर के देखा आज इसलिए इसको मना रहे हैं। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, तो उन्होंने दोनों लोगों को दिखा दिए थे, एक तो इस पूजा करने के लिए राधा रमन जी की पूजा करने के लिए, उनका नाम है, प्रसिद्ध नाम क्या है, गोपीनाथ पुजारी। एक केवल राधा रमन को सेवा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे, घर नहीं गए, और विग्रह पूजा के लिए। तो भक्तों भी इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री विग्रह को सेवा करने के लिए आजीवन। गोपीनाथ पुजारी और श्रीनिवास आचार्य उनकी मेन दो डिसाइपल है। तो गौर गणदेश दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, अनंग मंजरी बा गुण मंजरी है। और ये सालग्राम जो शिला जो प्रकट हुए राधा रमन के रूप में, तो उनकी हाइट कितना था, 12 इंच, और उनकी जो बाएं पैर है लेफ्ट फिट कैसे था, राधा मदन मान जैसे, और उनकी दो हाथ में जो बांसुरी और उनकी बख्य स्तन गोविंद देव जैसे, और उनकी मुख गोपीनाथ जैसे था। और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मुख्य है हरि भक्ति विलास और कृष्ण कर्णामृत और सत संदर्भ के ऊपर उन्होंने टिप्पणी दिए हैं, तो कमेंट्री के ऊपर भी कमेंट्री दिए हैं। और आज ये जो प्रसिद्ध उत्सव है, आज राधा रमन मंदिर में मनाए जा रहे हैं बहुत धूमधाम है, कि आज भी बहुत सारी श्रद्धालु उस वस्त्र देते हैं, अलंकार देते हैं और प्रसाद भी। और श्री कृष्ण की झूला एवं जल क्रीड़ा लीला, पूर्णिमा के दिन ही भगवान अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं, चाहे रास लीला के द्वारा हो बा जल क्रीड़ा के द्वारा हो। भगवान क्यों इस पूर्णिमा के दिन इस प्रकार लीला करते हैं, विशेष लीला, असुर संहार आदि लीला, माखन चोरी लीला वो अमावस्या में कर लेते हैं अंधार के दिन में और दूसरे दिन, लेकिन पूर्णिमा के दिन ये विशेष लीला होती है, इसमें सारी भक्तों की मनोरथ का पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे दोनों जो रास है, शरत रास और बसंत रास, वो पूर्णिमा के दिन हुआ था, और भगवान पूर्ण चंद्र को देख कर कि वो मन बनाते हैं। आप पढ़िए जो दसम स्कंद की 29वां अध्याय, शरद फुल्ल नयन। तो शरत ऋतु में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के चांद को देख करके भगवान मन बनाते हैं डांस करने के लिए। तो इसी दिन एक झूला यात्रा है, आप जानते हैं कि झूलन यात्रा ब्रज में विशेष प्रसिद्ध है, कहां पर, बरसाना में। तो भगवान एक पास्ट टाइम से हैं, जो राधा रानी के साथ छिप करके झूला झूले थे पीली पोखर के पास ये पूर्णिमा के दिन, और दूसरा एक दिन था जिसे हम जिसको कहते हैं हरियाली तीज, हरियाली तीज और ये पूर्णिमा। तो दो बार भगवान छिप करके गए राधा रानी के साथ झूला झूलने के लिए, और किस प्रकार, गोपी वेश में, श्यामा गोपी बन करके। तो लीला बहुत लंबी है, तो समय भी हो चुका है। और कृष्ण जब सखाओं के साथ और गोपियों के साथ जो वाटर स्पट, उनकी 64 कला में एक कला है जो जल क्रीड़ा, और चैतन्य महाप्रभु इस लीला को आस्वादन करते थे जगन्नाथपुरी में, कौन सी सरोवर में, नरेंद्र सरोवर में अपने पार्षदों के साथ। तो भगवान कृष्णा ये जो जल कली किए तो कहां पर, जमुना जल में, जिसमें पिचकारी मारना, गोपियों के वस्त्रों को अलग अलग ढंग से कलर कर देना, तो ये है वाटर स्पॉट, जल किला। तो आज के दिन श्री कृष्ण यमुना जल में इस प्रकार लीला किए थे। श्री कृष्ण झूलन यात्रा महा महोत्सव की जय, जल कली लीला महा महोत्सव की जय, श्री श्री राधा रमण देव प्राकट्य महा महोत्सव की जय, श्रीपाद माधवेन्द्र पुरीपाद श्रील श्रीनिवास आचार्य आपिभाव महा महोत्सव की जय, श्रील परम श्रीदास ठाकुर तिरभाव महा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।